बर्थडे है 24 दिसंबर 79, जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं, बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गई हुई है। अगर नैन नहीं है तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो, अपनी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है, आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है, ऐसा समझ करके चलते हो। ऐसी स्मृति रहती है, बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहां तक जग को रोशन कर रहे हैं। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहां भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो, क्या उस समय अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती है तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। तो क्या सुना, बाबा कह रहे हैं कौन हो तुम, इस जहान के नूर हो, इस जहान की रोशनी हो। तुम्हारे बगैर ये संसार असार है, बिना तुम्हारे संसार में अंधकार है, एक वीरानी सी छा जाएगी अगर तुम ना होते तो। आज बाप दादा बच्चों के हर एक बच्चे को देख हर्षित होते। आज बाबा ने कहा ना, बाप दादा भी प्यार का रिटर्न देता है। कैसे रिटर्न देता है,
तुम्हारे सम्मान
का प्यार का रिटर्न, अर्थात जिसका जिससे प्यार है उसको उसके समान बनना चाहिए। तो बाप दादा का हमसे प्यार है, इसके लिए वो हमारे समान बनता है, ये उसके प्यार का रिटर्न है। तो हमें उसके प्यार का रिटर्न देना है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। ये उसे कभी नहीं भूलता कि एक एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। आज के मुरली में भी एक प्रश्न है ना कि बाप दादा बच्चों को विशेष क्यों कहते हैं, ये सब विशेष आत्माएं क्यों है?
बच्चे में विशेष,
क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ विशेष है। सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, साधारण वेश में आए हुए भगवान को जान लिया।
कोटों में कोई,
ऐसे कोटों में कोई आत्मा ही जान सकती है, पहचान सकती है, मान सकती है, अपना बना सकती है, अपने जीवन को उसके कार्य में अर्पित कर सकती है, उसके रचे हुए यज्ञ की वेदी में अपने जीवन को स्वाहा कर सकती है। ऐसी कोई सामान्य आत्मा है, साधारण आत्मा है नहीं हो सकती जो अपने यौवन का बलिदान कर दे, कोई महान आत्मा ही कर सकती है ये। तो बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितना श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं। बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं। बाप दादा बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं होते तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर
आप अपने स्थिति पर हो तो जहान भी ऊंचा।
जहान के नूर अपनी स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आते हैं तो जहान भी गिर जाता है, जहान भी डगमग होने लगता है, जहान भी असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है,
जिम्मेवार।
हमारा एक एक संकल्प कितना महत्वपूर्ण है। हमारे संकल्पों में हलचल तो संसार में हलचल। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागे, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है। आपकी कीर्ति कला से विश्व की कीर्ति कला का संबंध है। हम ऊपर तो संसार ऊपर, हम नीचे तो संसार नीचे, हम अलचल में तो संसार अलचल में, हम अचल तो संसार भी अचल। इतनी जिम्मेवारी हरेक के ऊपर है। ऐसे समझकर चलते हो, ऐसी स्मृति रहती है। बाप दादा हरेक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हरेक जहान का नूर कहां तक जग को रोशन कर रहा है। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहां भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो। यहाँ भी यदि हद की लाइट इलेक्ट्रिक करंट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते। आज की मुरली में मुरली सुनाते सुनाते लाइट चली गई। अव्यक्त बाप दादा, कोई एक स्पीकर भाषण दे रहा है और लाइट चली गई तो ये एक सिचुएशनल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाबा ने कैसे हैंडल किया इसको आज। बाबा ने बहुत ही पावरफुल तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। नागेश भाई, लाइट चली गई बीच में तो क्या करता है स्पीकर, हलचल में आ जाते हैं बाकी स्पीकर। इसको उसको दोष कौन है, वो व्यवस्थापक संयोजक किसके ऊपर थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट की। क्यों गई लाइट, कैसे गई लाइट। कोई भाषण दे रहा है और माइक की कामना करे, कोई भाषण देने जाए और माइक ही नहीं, कोई भाषण देने जाए और कमरे में अंधारा अंधियारा, तो हलचल में आता है। तो आज की मुरली में लाइट अचानक चली गई, सडन क्राइसिस। तो मानस भाई क्या किया बाबा ने।
बाबा ने शिक्षा,
बाबा ने कहा इससे भी तुमको शिक्षा लेनी है। जैसे लाइट आती है और जाती है, बाबा सुना रहे कौन सी पॉइंट, पुकार सुनने की और उपकार करने की, उसी पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया। जैसे ये लाइट आती है और जाती है, इससे शिक्षा लो। एक सेकंड में पुकार सुनो और उपकार करो। आत्माओं की पुकार सुनो और आत्माओं पर उपकार करो। ये क्वालिटी है एक एक्सेलेंट स्पीकर की। तो हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो, क्या उस समय अच्छा लगता है। ऐसे अगर अब जहान की ज्योति हलचल में आती है, जहान की ज्योति हलचल में आती है तो आज इधर, तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा।
इधर आ जाओ,
आगे आंख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे व जहान के नूर, आप सबके ऊपर सबकी नजर है, सबको इंतजार है किस बात का। भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। यह जहान की आंख जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, क्या कह रहे बाबा? हे जहान के नूर बताओ, क्या बताओ? संपूर्णता की आंख कब खोलोगे? कितना सुंदर प्रश्न पूछा बाबा ने कि हे जहान के नूर बताओ, टेल मी, संपूर्णता की आंख कब खोलोगे? आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में क्या माया की धूल पड़ जाती है, तो आंख हिलती रहती है। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो आंखों का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि अब हमारे इष्ट देव व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। तुम्हें माला माल करना है, जो भी आत्माएं आज कहा ना टीचर बहनों से, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, निर्विघ्न बनना है और निर्विघ्न बनाना है। अगर कोई टीचर कहती है कि मैं तो संतुष्ट हूं पर दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो ये टीचर के योग्यता के विरुद्ध है। क्या शब्द कहे बाबा ने? अगर कोई कहती है कि मैं तो संतुष्ट हूं पर संतुष्ट कर नहीं सकती, तो ये टीचर के योग्यता के विरुद्ध है। तो आत्माओं को संतुष्ट करना, आत्माओं को भरपूर करना, आत्माओं को मालामाल करना, लाल संडे की मुरली में था ना, आत्माएं आएगी, सुपरमार्केट होना चाहिए। डबल विदेशियों से मुलाकात में बोला था ना, जो चाहिए वो, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे विदेश में मार्केट होता है सब चीज एक जगह मिलती है, तुम्हें भी जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो तुम दे सको। ढूंढते आएंगे, क्या कहेंगे वो लोग, कहाँ है कौन? सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है? उनको अनुभव भी क्या हो, ये जैसे शक्तियों की खान है, ऐसा उनको अनुभव। तो ढूंढते ढूंढते आएगी। और आज ही मुरली में कहा कि उनको क्यों में लगने का भी कष्ट नहीं दो, कुछ दिन पहले यही वरदान भी था, क्यों में लगने का भी उन्हें कष्ट नहीं दो, आते जाए और लेते जाए, आते जाए लेते जाए। और अमृत वेला भी बाबा से लेना है और देना है, वरदान लेना है और देना है, ये कार्य करना है। भाग्य बांट रहा है ना ब्रह्मा, कौन सा भाग्य, कौन सा अमृत बांट रहा है? भाग्य रूपी अमृत। तो वो लो और दो, लो और दो, वरदान लो और दो, पुकार सुनो और उपकार करो। पर वो आवाज सुनाई देनी चाहिए, इतना स्पष्ट सुनाई दे जैसे कि कोई कानों में बोल रहा है। क्या कहा बाबा ने आज? इतना स्पष्ट सुनाई दे कि जैसे कोई कानों में बोल रहा है। किसी माता ने कभी कहा था किसी क्लास में, जब बाबा इस पर मुरली चला रहे थे, कि भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती, तो माता ने, किसी ने कहा था, बाबा आपको हमारी पुकार नहीं सुनाई देती, हम ही तो कितने दुखी है, पहले आप हमारी पुकार सुनो फिर हम उनकी पुकार सुनेंगे, हम ही बहुत दुखी है। ब्राह्मण दुखी है तो पुकार तो कहां सुनेंगे, पहले तुम हमारी पुकार सुनो फिर हम उनकी सुनेंगे। वो क्या कहेंगे कि अब हमारे इष्ट देव और देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। वो बैठे हैं हमारे सामने और हम आंखें बंद करके बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा शक्ति दे दो। वो हमको कह रहे हैं कि हे देवी मेरा कल्याण करो, वरदान दो। हम बाबा से कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा मुझे वरदान दे दो आज, हम ही मांगने में बिजी है। हम ही भयभीत है कभी कभी, हम भाग रहे हैं, देविया शेर पर बैठकर भाग रही और भक्त पीछे, कैसा सीन है ये? अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी पर बैठकर बाबा कहाँ हो, और भक्त पीछे से आ रहे हैं, हे माँ, हे जगत जननी, हे पाप नाशिनी, कल्याण करो, उद्धार करो। तो क्या कहेंगे?
ड्रामा करना। विदेशी लोग ऐसा ही पिकअप करते और ड्रामा करते इस पर।
जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे, ऐसी ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे? नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, बहुत लंबी क्यू है, उन्हें तो क्यू में लगने का भी कष्ट नहीं दो आजकल, आते जाए और लेते जाए। इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं, जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का घुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त क्या कर रहे? भक्त लगे हुए पूरी कतार, दर्शन के लिए भीड़ भाड़ है, भरा हुआ है मंदिर, और देवी क्या कर रही है? अल्लाह को याद कर रही है। और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं। भक्त क्या सोचेंगे? तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसके लिए आंख का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं, वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करे। पीती सो पीती, अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कौन? कछुआ। सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति और रचना में भी है, पर आप मास्टर रचता। समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाप्त कर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। तो अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्म किया और कर्म से डिटैच्ड, उसका कोई प्रभाव नहीं। कर्मातीत अर्थात ना तो कर्म हमें टच करे और ना ही कर्म का परिणाम, कर्म का जो रिजल्ट है वो भी हमको टच ना करे। कर्म किया और डिटैच, ये है कर्म। संपूर्ण न्यारा, कर्म का प्रभाव ना पड़े उससे भी सूक्ष्म है कर्म के परिणाम भी हमको टच ना करे। बाबा ने कभी कर्मातीत की परिभाषा दी है, दीदी से बात करते हुए पर्सनल मुलाकात, कर्मातीत अर्थात न कर्म तुम्हें टच करे और ना ही कर्म का रिजल्ट तुम्हें टच करे, दोनों चीजें तुम्हें टच ना करे, उसको कर्मातीत कहा है। तो अभी अभी कर्म योगी, कर्म करते हुए भी योग, पर वो होने के बाद उससे अलग, उससे डिटैच,
स्वतंत्र।
तो आपकी रचना किसका उदाहरण दिया? कछुए का। कछुआ क्या करता है? समेट लेता है स्वयं को। इतना विस्तार में नहीं चले जाना है कि वो विस्तार में ही हम खो जाए, इतना कर्म में नहीं घुस जाना है कि उस जंगल में ही कहीं खो जाए, तुरंत उससे निकलते आना चाहिए। कर्म किया और डिटैच। तो जैसे आपकी आपकी रचना में ही शक्ति है, ये रचना है, प्रकृति की, प्रकृति के ये बाबा बहुत सारे जानवरों के उदाहरण देते हैं, कछुए से सीखो, भ्रमरी से सीखो, उस सांप से सीखो, और किससे सीखो, बिच्छू से सीखो, और किससे सीखो,
चूहा,
चूहा से क्या सीखो,
वो
तो माया, माया चूहा है ना, हम
क्या पहले देखता है सॉफ्ट है क्या नहीं, वैसे आप नव्य देखो ना, वो वैसा है फिर वो ये कर बेहोश
देखना पड़ेगा नव्य,
तो देवभान से आप बेहोश करो ना सॉफ्ट करके।
कई सारे जानवरों के बाबा उदाहरण देता है और उनसे कहता है कि इनके जैसा बनो, इनके इनसे सीखो, इनमें अकल है, भ्रमरी है, सांप है, चूहा है, कछुआ है, और कौन सा है, मकड़ा,
मकड़ी के जाल,
मकड़ी स्वयं ही जाल रचना करता है और उसमें स्वयं फंसता है। तो समेटने की शक्ति, स्वयं को समेटना, अभी चारों ओर की हलचल की परिस्थिति हो फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ, फुल स्टॉप लगाना आता है, फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है, फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति प्रति का अचल होना, अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्व का विकराल रूप होगा, फाइनल पेपर में पांचों तत्व का विकराल रूप होगा, एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, तीसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे, तीसरी तरफ एक तरफ पांच विकार, दूसरी तरफ पांच तत्व और तीसरी तरफ
आत्माओं का वायुमंडल,
तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे, एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, और चौथी तरफ क्या होगा,
कर्म बंधन, अपने
कर्म भोग, पुराने संस्कार, लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का रूप क्या होगा, किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएगा, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएगा, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएगा, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएगा, ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे, तीनों सत्ताएं हलचल में होगी। आज बाबा ने एक चौथी सत्ता का वर्णन किया है आज की मुरली में, डॉक्टर मानस,
कर्म सत्ता,
कौन सी सत्ता है, सुप्रीम पावर, तो कर्म उसको तो पुकार रहे हैं,
कर्म,
ये जो सत्ताएं हैं संसार की उनमें और एक सत्ता है आज की मुरली में है, राज्य सत्ता एक तो जो राजनेता है, धर्म सत्ता जो धर्म के गुरु ठेकेदार, विज्ञान सत्ता विज्ञान वाले जो अपने ही अहंकार में है, और चौथी
साइलेंस,
वो तो है ही, वो तो संसार अज्ञानियों की, अवाम, अवाम की सत्ता, अवाम अर्थात जनमानस, लोग मानव, उसको अवाम कहा जाता है हिंदी में, जो लोग है, सामान्य जनता, सामान्य लोग, वो भी एक सत्ता है ना। तो विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे,
जन सत्ता,
जनसत्ता कहो उसको अवाम कहा जाता है हिंदी में,
आम आवाम भयम,
सामान्य लोग, वो भी एक सत्ता है ना, उनमें भी तो पावर होती है, तो वो सभी हलचल में होंगे, सबकी सब सत्ता है हलचल में होगी, एक ही सुप्रीम सत्ता है परमात्मा सत्ता। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा कि क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, क्या होगा, इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो, क्या करो, प्रकृति को शांत करो, अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो, तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत आपके पास, जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकार, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए ना। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, तो फरिश्ते बन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता है, ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। बाबा समय का इशारा दे रहा है, इतनी भयंकर हलचल होने वाली है, सब कुछ हिल जाएगा। उस हलचल की स्थिति में हमारी स्थिति अचल, उसके लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए, लंबे समय का अभ्यास, तुरंत नहीं हो जाएगा। समय की गति कितना विकराल रूप लेने वाली है, इसके लिए बाबा ने अभ्यास बताया, साकारी आकारी और निराकारी। अभी अभी स्तन में, अभी अभी स्तन से निकलकर फरिश्ता, और अभी अभी उस फरिश्ते की आत्मा निकलकर परमधाम, निराकार आकार और साकार, आना जाना।
समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा,
पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। इसके लिए कल की मुरली में वाक्य था ना, पुरुषार्थ तुम्हें करना है और कराना है, खुद भी करना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है, क्योंकि पुरुषार्थ का समय ये तो कब की 79 की मुरली, तब कह रहे बाबा ये। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो, या डेट बनाएंगे तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही नहीं, और कुछ कह रहे, डेट बाबा नहीं बताएगा, ये डेट क्या हो जाएगी तुम,
आपको ही फिक्स करनी पड़ेगी,
आपको फिक्स करनी पड़ेगी, और फिक्स हो जाएगी ऑलरेडी आप ही। और डेट का क्या कह रहे हैं देवेंद्र भाई? बाबा कहते हैं डेट बताई नहीं जाएगी, डेट का आह्वान करो तो तुम्हारे पास कूड़ उड़ कर आएगी, स्वर्णिम अक्षरों में दिखेगी, अच्छा ये डेट है,
आपकी स्थिति डेट,
आपकी स्थिति डेट बन जाएगी, अच्छा। और बाबा कह रहे हैं फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी, स्वयं टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के सामने कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप से अनुभव होगा, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें
खुली
नहीं, सदा खुली रहे, केवल खुली नहीं, आंख तो खुली चाहिए ना देर देखने के लिए, वो भी दिखे और हमारी आंख बंद है, हम ये कर रहे हैं तो कैसे होगा। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे, 23 की जगह 22 दिखेगा, 24 दिखेगा, ऐसी डेट में थोड़ा ये हो जाएगा, हाँ धोखा खा जाएंगे, हम सोचेंगे अभी 24 घंटा बाकी है और तभी विनाश, तो फिर कैसे हो जाए। समझा क्या अभ्यास करना है मंजू बहन? समझा
2012-21 दिसंबर को बहुत लोग
माया सभ्यता थी, वो उनकी सभ्यता अनुसार की डेट थी उनकी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने उसे समझने में भूल की है, वो उनकी सभ्यता का अंत होगा, जो माया सभ्यता थी, रेड इंडियंस ने जो सभ्यता स्थापन की थी, शायद वो जब लिखा गया तो शायद वो तारीख को उनकी सभ्यता अंत होगी, उसमें संपूर्ण विश्व का विनाश होगा ये नहीं होगा। तो क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करना, तो क्या सुना हम सब कौन है? जहान के नूर, तो जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे, जहान के नूरों अगर है तो जहान में रोशनी है, आंखें बंद तो संसार में हलचल अंधकार है। तो बताओ कौन सी आंख? संपूर्णता की आंख। कैसी हो? सदा खुली हो। और क्या कहा? भक्तों के लिए कहा ना, संपूर्णता की है तो आधार मूर्त है। तो ऐसा ना हो कि भक्त दरवाजा खोले और दर्शनीय मूर्त गुटके खा रहे, तो भक्तों का क्या हाल होगा? तो बाबा अमृत वेले सभी जहान के नूरों को देखते हैं, तो सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं। यहाँ उदाहरण दिया कछुए का, जैसे उसमें समेटने की शक्ति है वैसे हम भी स्वयं को समेट सके। और फिर बाबा ने ये अंतिम स्थिति में क्या होगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, समेटने की शक्ति और साकारी आकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास, ये दो तीन अभ्यास बताया। उसी को बाबा ने कहा ड्रेस चेंज करना, और ड्रेस और डेट तुमको स्वतः ही टच होगी। लास्ट में चारों तरफ हलचल होगी, एक तरफ पांच विकार। कभी बाबा ने कहा है 10 खिलाड़ी, एक ही मुरली चलिए ना 10 खिलाड़ियों, पांच विकार, पांच तत्व प्रकृति के और पांच विकार माया के। अभी क्रिकेट खिलाड़ी खेल ना करे ये हो नहीं सकता, खेल के बिना रह नहीं सकते, खिलाड़ियों का तो स्वभाव ही है खेलना, स्पोर्ट्समैन का तो उनको स्पोर्ट्स ही अच्छा लगता है, वो ना खेले ये हो नहीं सकता। उनका अंतिम खेल होगा वो सृष्टि में, इस ड्रामा का क्या कहते हैं उसे हिंदी, कर्टन फॉल, पटाक्षेप होने से पहले वो खेल होगा, एक अंतिम खेल। एक तरफ ये, एक तरफ वो, तीसरी तरफ तमोगुनी आत्माएं और चौथी तरफ पुराने संस्कार। तो ऐसी भयंकर प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसके लिए अलबेलापन आलस्य का त्याग करो, ये सारी सत्ताओं की भी हलचल होगी, ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा कि क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, क्या आएगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तो ऐसा अभ्यास करो। अच्छा ऑप्शन।